ओम शांति। किसी एक जहाज में यात्रा कर रहे दो व्यक्ति, जहाज का सफर था और अचानक तूफान आया। तूफान से जहाज जो था वो पूरा उध्वस्त हो गया। जैसे तैसे जान बचाकर वो दो राही, वो दो यात्री समुन्दर में कूदे और एक जगह पहुंचे। पहुंचने के बाद देखा कि यह एक टापू है, सुनसान सा टापू। इस टापू पर कोई नहीं था, कोई मनुष्य नहीं था, ना ही कोई प्राणी था, बियाबान जंगल सब जैसा। तो दोनों ने सोचा अब क्या किया जाए। बहुत ढूंढा मनुष्य को, कोई नहीं मिला। वो टापू ऐसा था कि समुन्दर के बीचों बीच जाने का कोई मार्ग नहीं। उनके जितने साथी थे जहाज के, वो सारे ही करीब करीब मर चुके थे। तो उन दोनों ने सोचा अब क्या किया जाए। उसमें से वैसे तो दोनों ही भक्त थे। एक ने कहा देखते हैं किसकी प्रार्थना भगवान सुनते हैं। तो टापू को विभाजित कर दिया, आधा टापू तुम्हारा और आधा मेरा। इस टापू पर, इस भाग पर मैं प्रार्थना करूंगा, उस भाग पर तुम प्रार्थना करना। देखते हैं किसकी प्रार्थना सुनी जाती है। तो जो पहला व्यक्ति होता है, जिसने ये कहा होता है, वो भगवान से कहता है कि मुझे भूख लगी है, बहुत प्रार्थना करता है। तो थोड़े ही देर में पाता है कि सामने बहुत सारे फलों से लदे हुए वृक्ष आ गए। बहुत संतुष्टि होती है उसे। दूसरा जो है वो भी कुछ प्रार्थना करता है, क्या करता है पता नहीं, पर कुछ तो करता है, परंतु कोई वृक्ष वहां नहीं आते। कुछ देर बाद वो प्रार्थना करता है, पहला व्यक्ति, कि जल मिल जाए। देखता है कहीं पर जल उसे मिल जाता है। थोड़े देर बाद, कुछ दिनों बाद, फिर प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मुझे कपड़े दे दो, मुझे घर दे दो। जो जो कहता है वो सब सब होने लगता है। दूसरा जो व्यक्ति है वो वैसा ही रहता है। उसको ना तो फल मिलते हैं, ना तो जल मिलता है, ना तो वस्त्र मिलते हैं, और ना ही कोई मकान मिलता है। पहला कहता है कि मेरी पत्नी भी यहां आ जाए तो कितना अच्छा होता। भगवान से प्रार्थना करता है। कुछ समय बाद एक दूसरी नाव, जिस पर उसकी पत्नी होती है, वो आती रहती है। वो नाव भी टूट जाता है, तूफान में बह जाता है, और उसकी पत्नी उसी टापू पर पहुंच जाती है। फिर से भगवान को धन्यवाद देता है, कहता है कि मेरी कितनी सुनते हो तुम। और फिर अंतिम प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, सब कुछ तो दे दिया, अब बस एक काम कर दे कि यहां कोई एक दूसरा जहाज आ जाए और उस पर बैठकर हम दोनों अर्थात कौन दोनों, मित्र नहीं, उसकी पत्नी, यहां से निकल जाए। और देखते ही देखते वहां पर एक जहाज आ जाता है। दोनों ही उसमें बैठते हैं और जो दूसरा होता है टापू के उस ओर, वो भी वहां आता है। जैसे ही ये दोनों यहां जहाज में बैठते हैं और जाने की यात्रा आरंभ करते हैं, आकाश से जैसे कि एक आकाशवाणी होती है कि रुको, अपने मित्र को भी ले जाओ। वो कहता है कि मित्र को क्यों ले जाऊं, प्रार्थना तो मेरी सुनी गई है, जो जो मैंने भगवान से मांगा वो मुझे मिला है, ये सब मेरे ऊपर ब्लेसिंग हुई है भगवान की, उसके ऊपर तो नहीं हुई हो, तो मैं इसको क्यों लूं। वो कहता है उसकी प्रार्थना की वजह से ही तुम यहां बैठ पा रहे हो। तो प्रश्न ये है कि वो जो दूसरा व्यक्ति था, उसने तो अपने लिए कोई प्रार्थना नहीं की थी, तो उसने कौन सी ऐसी प्रार्थना की जो कि वो आकाशवाणी अब कह रही है कि मैंने उसकी सुनी है तुम्हारी नहीं, तुम भ्रम में हो जो ये सोच रहे हो कि मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी है। प्रश्न है उस दूसरे यात्री ने कौन सी प्रार्थना की होगी, कौन बताएगा? विश्व कल्याण। ये तो ब्राह्मणों की का शब्द है। हाँ, तो वो प्रार्थना करता है कि मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मेरा मित्र जो जो प्रार्थना करेगा वो सारी ही तुम पूरी कर देना। कितना श्रेष्ठ भाव है, कितनी ऊंची वृत्ति है देने की। जो जे वांछिल तोते लाहो प्राणीजात, जिसकी जो जो इच्छा हो, शुभ इच्छा, वो पूर्ण हो जाए। बेहद की वृत्ति है ये। जो आध्यात्मिक रीति से दरिद्र है वो इस तरह की प्रार्थना नहीं कर सकते। साइकोलॉजी में दो प्रकार के एटीट्यूड्स बताए जाते हैं, मनोविज्ञान में। एक है प्रॉस्पेरिटी एटीट्यूड और दूसरा है पॉवर्टी एटीट्यूड। प्रॉस्पेरिटी एटीट्यूड का धन कितना है उससे संबंध नहीं है, वृत्ति ही देने की है। पॉवर्टी एटीट्यूड जो दरिद्र है, अकिंचन कृपण, वहां पर धन से कोई संबंध नहीं है, परंतु देने का ही भाव है, देने की ही वृत्ति है। पाश्चात्य जगत में एक मनोविज्ञानिक हुए हैं, अब भी है, उनका नाम है मार्टिन सेलिगमन। पॉजिटिव साइकोलॉजी के जो पायनियर है, प्रणेता, पॉजिटिव सकारात्मक मनोविज्ञान, अभी भी है, अभी भी लगभग 73 उनकी उम्र है। उन्होंने एक बहुत सुंदर एक्सपेरिमेंट किया था अपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। उनके जो स्टूडेंट्स थे मनोविज्ञान के, एक दिन उनको कहा कि चलो हम सब अब आज पढ़ाई वगैरह कुछ नहीं करेंगे, सिनेमा देखने चलते हैं, मूवी। तो सब बच्चे बहुत खुश हो गए और सब लोग मूवी देखने गए। मूवी देखकर आए और फिर दूसरे दिन कहा कि जो तुमने मूवी देखी, क्योंकि साइकोलॉजी है तो अब रेटिंग करो, सेटिस्फेक्शन चार्ट जिसको पोतामेल जिसको कहते, कितना संतुष्टता हुई, 0 से लेके 5 तक, 0, 1, 2, 3। तो सबने लिखी अपनी अपनी, किसी ने 4, किसी ने 5, किसी ने 3, किसी ने 1, उस अनुसार। एक हफ्ते के बाद फिर कहा कि आज कुछ और नया करते हैं। सबने कहा मूवी, उन्होंने कहा नहीं, आज मूवी नहीं, आज कुछ और कार्य करते हैं। आज ये कहानी अमेरिका की है। अमेरिका में भी कुछ ऐसे पॉकेट्स एरियाज है जहां गरीब लोग रहते हैं, आज वहां जाएंगे और वहां के जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए कुछ सौगात लेकर जाएंगे, किसी के लिए गिफ्ट, किसी के लिए टी शर्ट, किसी के लिए पेन, किसी के लिए पेंसिल। तो आज हम ये कार्य करेंगे। तो एक पूरी दोपहर उसमें चली जाती है। फिर दूसरे दिन रेटिंग, संतुष्टता कितनी हुई, किसी ने 2, किसी ने 3, किसी ने 4, किसी ने 5। 6 मास गुजर गए। 6 मास के बाद पूछा कि अब फिर से वो रेटिंग लिखो, पहले तो जो मूवी गए थे और सबने बहुत एंजॉय किया था उसमें कितनी संतुष्टता हुई, उसमें से तो कितने बच्चे ऐसे थे कि उनको याद भी नहीं था वो कौन सी मूवी थी, क्योंकि न मालूम उसके बाद कितनी और देख ली। उसमें प्लेजर उत्पन्न हुआ था, प्लेजर मिला था, सुख मिला था, परंतु वो क्षणिक था। फिर पूछा गया कि अब फिर से वो रेटिंग लिखो जो 6 मास पहले वो जो गरीब बच्चे थे जिनको हमने कुछ दिया था उसमें कितनी संतुष्टता मिली। सबको वो याद था, सबने फिर लिखा, किसी ने 4, किसी ने 5। संसार के जो सुख है उसमें जो साधनों से प्राप्ति होती है, अगर हम अपने ही जीवन को देखें और अपनी रेटिंग करें इस तरह से संतुष्टता की, तो हम पाएंगे वो कर कार्य जो संपूर्ण निस्वार्थ भाव से किया गया था। ऑल दैट इज अनसेल्फिश इज मॉरल, ऑल दैट इज सेल्फिश इज इमॉरल। विवेकानंद ने कहा है कहीं कि जहां जहां स्वार्थ से जो कुछ किया जाता है, दिया जाता है, वहां नैतिकता नहीं है। जो निस्वार्थ भाव से दिया जाता है, जो निस्वार्थ भाव से सेवा की जाती है, निस्वार्थ भाव से जो भी कर्म किए जाते हैं, जहां बेहद की वृत्ति है, दाता का भाव जहां है, ऐसा भाव जहां है, वो जो संतुष्टता प्राप्त होती है वो चिरस्थाई होती है, लंबे समय तक रहती है। तो बाबा हम बच्चों को क्या कह रहे हैं, इस समय समय की क्या पुकार है, आत्माओं की क्या पुकार है, प्रकृति की क्या पुकार है, भगवान की क्या पुकार है, ब्रह्मा की क्या पुकार है, एडवांस पार्टी की आत्माओं की क्या पुकार है। तो समय खड़ा है और पुकार रहा है, समय की गुहार हमें सुनाई दे रही है। बाबा ने कहा अपने लिए सोचो, दो शब्दों का प्रयोग किया है बाबा ने, अपने लिए सोचो और अपने से पूछो। भाषण तो बहुत दे दिए, समय की पुकार क्या है वो सुना दिया, परंतु समय की पुकार सुनाई देती है, आत्माओं की पुकार सुनाई देती है, मेरे लिए समय की पुकार क्या है, समय मुझसे क्या कह रहा है। किसी मुरली में बाबा ने कहा है समय मुड़ मुड़ कर देखता है, समय कौन है, तुम्हारी रचना है, तुम रचता हो, परंतु समय की रफ्तार तुमसे ज्यादा है, समय तुमसे आगे निकल रहा है और मुड़ मुड़ कर देख रहा है और क्या कह रहा है, ए मेरे मालिको कहां तक पहुंचे हो। तो समय की रफ्तार तेज है, समय हमें कुछ कह रहा है, समय हमें कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, क्या हम वो सुन रहे हैं। बाबा ने पांडवों से पूछा क्या समय की पुकार सुनाई देती है, क्या आत्माओं की पुकार सुनाई देती है, प्रकृति भी कुछ हमसे कह रही है। आज की मुरली में है ना, नेचुरल कैलमिटीज, कुछ तो कह रही है, सूर्य की ऐसी तपत होगी कि बात मत पूछो, बरसात कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं अन्न मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, तमोप्रधान तूफान, खूने नायक खेल, प्रकृति भी हमसे कुछ कह रही है, समय तो कह ही रहा है, भगवान तो कह कहकर थका नहीं है अब तक, अभी भी कह रहा है, सुनने वाले थक गए। देने का भाव चित्त में प्रगाढ़ हो जाए, जो हमें मिला है, जिन प्राप्तियों से हमने स्वयं को भरा है, जिन अनुभवों की खान से स्वयं को हमने भरा है, अब वो देने का समय है। कब तक लेते ही रहोगे, भगवान कह रहा है तुमने अब तक पालना ली है, अब देने का समय है, अब संसार को विघ्न मुक्त बनाने का समय है। खुद ही विघ्नों में अगर फंसे हैं तो संसार को विघ्न मुक्त कैसे बनाएंगे, खुद ही पर विकार यदि हावी हो जाते हैं तो संसार को विकारो जीत हम कैसे बनाएंगे, कितने बड़े हमारे कर्तव्य है। भारतीय संस्कृति में एक बहुत ही महान पुरुष हुए हैं जिनका नाम है रामानुजाचार्य, विशिष्ट अद्वैत के प्रणेता। उसके जीवन में दिखाया है जब उसके गुरु से वो मंत्र लेने गया तो गुरु ने उसको कम से कम 18 बार वापस भेज दिया, दिया नहीं मंत्र, क्योंकि वो उसकी चेकिंग करना चाहता था क्या ये पात्र है या नहीं है। नंबी उसके गुरु का नाम था, श्रीरंगपुरम से तो कहां तक वो लंबी एक यात्रा करता है, कितनी बार, 18 बार उसको वापस भेजता है और फिर अंत में उसको मंत्र देता है और कहता है कि ये जो मंत्र है ओम नमो नमो नारायणा, सबसे पावरफुल मंत्र है, ये मंत्र तुम किसी को मत देना, ये मंत्र बहुत ही गुप्त मंत्र है, अगर इस मंत्र का तुम जाप करो तो तुम्हें जीवन मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा ये बहुत ही अद्भुत सा मंत्र है, क्योंकि तुम पात्र हो, शायद संसार की आत्माएं पात्र नहीं है, परंतु इस मंत्र में ऐसा सामर्थ्य है कि जो भी इस मंत्र का जाप करेगा वो मुक्त हो जाएगा, परंतु इसे गुप्त रखना। तो वो क्या करता है, वो सोचता है कि ये मंत्र अगर इतना ही शक्तिशाली है तो क्यों ना मैं इसे सबको दे दूं, ताकि विश्व की हर आत्मा का कल्याण हो जाए, मंदिर के ऊपर जाकर खड़ा होता है और जोर जोर से चीख चीख कर पुकारता है कि सब आ जाओ, और सारी गांव को जहां वो रहता है सबको जोर जोर से मंत्र सुना देता है। जब गुरु तक बात पहुंचती है तो गुरु को बहुत क्रोध आता है। वो कहता है तुमने ऐसा क्यों किया? वो कहता है मेरे से अपराध तो हुआ है, परंतु यदि इस पाप के लिए मुझे 1000 बार भी नरक जाना पड़े तो भी मैं तैयार हूं, क्योंकि जैसे आपने कहा था यह मंत्र शक्तिशाली है, वास्तव में शक्तिशाली है, क्योंकि इसके कारण जिन जिन ने यह सुना वो सभी जीवन मुक्ति को प्राप्त होंगे। तो फिर गुरु भी खुश हो जाते हैं बाद में। तो देने का भाव है यहां पर, जो हमें प्राप्त हुआ है, जो हमें मिला है, जो आध्यात्मिक संपदा हमें प्राप्त हुई है, विश्व की हर आत्मा को वह हमें देना है, हरेक को भरपूर करना है। तो कौन किसको देख रहा है इस मुरली में, कल की मुरली में? आज कौन? सर्वश्रेष्ठ भाग्य विधाता, सर्वशक्तियों के दाता, वो सर्वशक्तियों के दाता है। हम मास्टर सर्वशक्तियों के दाता है, वो सर्वश्रेष्ठ भाग्य विधाता है, तो हम मास्टर सर्वश्रेष्ठ भाग्य विधाता है। बच्चों को देखकर हर्षित हो रहे हैं, बच्चे भी हर्षित हो रहे हैं, वो हमें देख रहा है और हम उसे देख रहे हैं और दोनों हर्षित हो रहे, सदा और सच्चा ये हर्ष कुछ कर रहा है। ये जो मिलन हो रहा है और उससे जो हर्ष की उत्पत्ति हो रही है, जो आनंद, जो आह्लाद और जो प्रसन्नता उत्पन्न हो रही है, वो दो कार्य कर रही है। कौन से? सर्व आत्माओं के दुखों को दूर कर रही है। तो हमारी खुशी का कितना महत्व है, हमारा हर्ष संसार की आत्माओं के दुखों को दूर करता है। हमारा एक एक हर्ष का संकल्प, एक एक आह्लाद का संकल्प, एक एक सुख की अनुभूति, केवल वो अनुभूति विश्व के आत्माओं के दुखों को दूर करती है, एक कार्य। दूसरा, आत्माओं को बाप का अनुभव कराती है, क्योंकि बाप सर्व आत्माओं के प्रति क्या है? सेवाधारी है। और हम सब भी कौन है? बाप के सेवा साथी। तो बाबा जो सम्मुख बैठे हैं उन्हें देख रहा है, जो दूर बैठे हैं, जो सुन रहे हैं और देख रहे हैं, और सबको कहां देख रहा है? दिल के सम्मुख देख रहा है। याद प्यार में कहा ना, जो मधुबन में नीचे बैठे हैं वो, जो दूर बैठे हैं वो, जो सम्मुख बैठे हैं वो, उन सबको बाबा याद प्यार दे रहे हैं जो उसके दिल के सम्मुख है। तो जैसे बाबा कह रहे हैं, याद और सेवा, सेवा और याद, कर्म और याद, याद और समान, सारी जोड़ियां बनाई है बाबा ने यहां पर। साथ साथ हो, किसके सेवा साथी हो? बाप के। तो बाबा सदैव सेवा में है, निरंतर सेवाधारी है। सेवा के घंटे अलग, याद के घंटे अलग, ऐसा नहीं हो। सेवा कम तो याद ज्यादा, याद ज्यादा तो सेवा कम, ये नहीं हो। याद 100% तो सेवा भी 100%। योग और कर्म, याद और समान, समान है ही बाप समान। समान याद करोगे तो समान है ही, और समान अगर याद नहीं तो समान, अगर समान नहीं तो याद भी शक्तिशाली नहीं, याद भी पावरफुल नहीं। तो बाबा कह रहे हैं कि हम जो भी कर्म करें वो कर्म केवल कर्म ना हो, केवल 4 घंटे वाली सेवा नहीं, केवल 6 घंटे वाली सेवा नहीं, केवल 8 घंटे वाली सेवा नहीं, केवल 10 घंटे वाली सेवा नहीं, श्वासो श्वास, हर श्वास में, हर सेकंड सेवाधारी, मनसा में, वाचा में, कर्मना में, संबंध संपर्क में, हम जो कुछ भी करें, जो कुछ भी बोले वो सेवा हो, ऐसी हमारी श्रेष्ठ स्थिति बाबा देखना चाहते हैं। सेवा का संपूर्ण स्वरूप, जैसे वो स्वयं है। बाबा ने अपना ही उदाहरण दिया है, बाबा ने यहां एक दूसरा उदाहरण दिया है आत्मा और शरीर का। जैसे आत्मा और शरीर स्टेज पर एक साथ है, अलग अलग नहीं है, वैसे ही ये दोनों चीजें भी हमेशा साथ साथ होती रहे। तो निरंतर चेक करो कि जब हम इस यज्ञ भूमि में बैठकर सेवा कर रहे हैं तो केवल सेवा ना हो परंतु याद उसमें समाई हुई हो, हमारा कर्म ही जैसे कि याद हो, हमारी याद ही जैसे कि सेवा हो, दोनों एक दूसरे के पूरक है। तो बाबा पूछ रहे हैं समय की पुकार क्या है। क्या है समय की पुकार? दाता बनना है। किस चीज का दान देना है और कब और कैसे? दाता बनने की क्वालिफिकेशन सबसे पहले सुनाओ। क्या कहा? कौन बन सकता है दाता? जो मास्टर क्षमा का सागर है। और दूसरा, श्रीमद पर चलने वाली तो पॉइंट आज थी जो संपन्न है, जो भरपूर है, जिसने स्वयं को भरा है। कल भाई साहब कह रहे थे ना, सूरज भाई जी रात में यहीं पर, अनुभव से हमें भरना है स्वयं को। हमारी एक सेवा ये भी है, स्वयं को बाबा के स्नेह के अनुभव से भर देना, ये भी सेवा है। ये सेवा का अनुभव सुनाना कितनी बड़ी सेवा है। आत्माओं में परमात्मा प्रेम भर देना कितनी बड़ी सेवा है। तो मास्टर क्षमा का सागर, जो संपन्न है, जो संपूर्ण है, वह दाता बन सकते हैं। जो बेहद की वृत्ति में रहते हैं वह दाता बन सकते हैं। और दाता कौन बन सकते हैं? जो इच्छा मात्रम अविद्या है, जिन्हें कुछ भी लेने का भाव नहीं है, सूक्ष्म और स्थूल कुछ भी लेने की इच्छा नहीं है, जिन्हें देने का भाव इतना प्रगाढ़ हो गया है, वो भाव अंदर अंत चेतना में अंतर जगत में ज्योतिर्मय व्यक्तित्व जिनका हो गया है, देने के भाव से, केवल देना है। हम आए ही है किस लिए? द आर्ट ऑफ लिविंग इज द आर्ट ऑफ गिविंग। आर्ट ऑफ लिविंग जो है वो क्या है? आर्ट ऑफ गिविंग। क्योंकि देना ही लेना है। बाबा ने उदाहरण दिया है, जब तुम किसी को समान देते हो तो क्या हो जाता है? तुम्हारे स्वयं का ही समान बढ़ जाता है। देना अर्थात ही लेना। यहां का अर्थशास्त्र ही संसार की तुलना में कैसा है? उल्टा है। यहां का फाइनेंशियल सिस्टम ही दूसरा है। यहां देना ही लेना है। तो क्या देना है? आत्माओं को स्नेह देना है, ज्ञान देना है, अनुभव देना है, और सबसे एक महत्वपूर्ण बात है वो है समय। उसकी बहुत कमी है। टाइम देना किसी को। चला कल्प तरुंचे आरव, चेतना चिंता मणिंचे गाव। चला कल्प तरुंचे आरव, ऐसी जो आत्माएं हैं, महाराष्ट्र के एक संत ज्ञानेश्वर है, अपने पसायदान में लिखते हैं, चला कल्प तरुंचे आरव। आरव अर्थात जंगल है जैसी ये आत्मा। किसका? कल्प तरु का। किसी को अगर एक कल्प तरु मिल जाए तो सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। चला कल्प तरुंचे आरव, चेतना चिंतामणि से गाव। चिंतामणि अगर किसी को मिल जाए तो सारी इच्छा पूर्ण होती है। ऐसी जो संसार की आत्मा है महानतम, वो क्या है? गाव है जैसे। अमृताचे पीयूषाचे बोलती जे अर्णव, जो वो बोलते हैं ऐसी आत्माएं, वो अर्णव है। किसका? अर्णव अर्थात समुद्र है। पीयूषाचे, पीयूष अर्थात अमृत। जो ऐसी संसार की महानतम आत्माएं जो कुछ भी बोलती है, कैसा है वो? अमृत के समान है, पीयूष के समान है। चंद्रमे जे अलांछन, चंद्रमा के समान लांछन रहित मार्तंड तापहीन। सूर्य की तरह तेजस्वी है परंतु उस ताप से किसी को दुख नहीं होता, ऐसी महान आत्माएं हैं। बाबा कह रहे मास्टर क्षमा का सागर। बाबा कह रहे संपन्न संपूर्ण बेहद के दाता, दातापन का जहां भाव है, जैसे बाप देता है, बाप लेता भी है परंतु उसका लेना भी क्या है? देना है। वो पुराना लेता है और नया देता है, तो उसका ये देना जो है वो, उसका ये लेना जो है वो लेना नहीं है। क्या है? देना है। कोमल चित अति दीन दयाला, बिनु कारण रघुनाथ कृपाला। तुलसीदास लिखता है कि बिनु कारण रघुनाथ कृपाला, भगवान बिना कोई कारण के ही दया सिंधु है, कृपा निधान है, करुणा सिंधु है। तो परमात्मा क्षमा का सागर है। जब हम उसके पास आए थे, उसने देखा था हमने क्या क्या पाप किए। कुछ नहीं देखा, न काला देखा न गोरा, न श्याम देखा न सुंदर, मस्तक पर ज्योति बिंदु देखा मेरा है। आज कहा है वो बात, मेरा है बस यह देखा। तो ऐसी जो आत्माएं हैं दाता, उनमें और एक गुण भी है जो बाबा ने कहा, वो कुछ तो स्वीकार नहीं करेंगी, ना मन में ना बुद्धि में ना दिमाग में ना दिल में। कौन सी बात? जो बात बुरी है, जो बात अच्छी नहीं है। परंतु ऐसी आत्माओं के प्रति भी क्या करेगी? शुभ भावना, शुभ कामना और दातापन का भाव होगा। चाहे कोई भी आ जाए सामने, ये नहीं देखेंगी कि आत्मा कौन है, क्या है, कैसी है। कोई दे या न दे, हमें देना है। कैसी भी आत्मा हो, कोई दे या न दे, हमें देना है। कोई मान दे या न दे, मुझे देना है, मुझे करना है। यह भाव, देने का भाव, अपने चित्त में इस भाव को और ही गहरे उतरने देना है कि जो भी मिले कुछ तो हमसे ले जाए, श्रेष्ठ भावनाएं ले जाए, शुभ संकल्प ले जाए, वाइब्रेशंस ले जाए, कुछ तो ले जाए, खाली हाथ ना जाए। ये भावना हमें और ही अपने अंदर प्रगाढ़ करनी है, तीव्र करनी है। तो शुभ भावना, शुभ कामना रखेगा, हरेक के प्रति सहयोगी होगा। उससे क्या हो जाएगा? स्वयं के हद के संस्कार और उसके भी हद के संस्कार, दूसरी जो आत्मा है वो परिवर्तन हो जाएंगे। दूसरों संसार के दुखों को परिवर्तन करने वाले और संसार के आत्माओं को सुख का साधन देने की सेवा में उपस्थित रहने वाली ये आत्माएं हैं। ये समय की पुकार है। अपने लिए कुछ नहीं, जहां से मैं जो है वो मिट जाए। ये मैं ही है जो सारी बाधा उत्पन्न करता है। सब कुछ बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, अनेकों के कल्याण के लिए, अनेकों के सुख के लिए, ऐसा हमारा जीवन हो। समय की पुकार। दूसरा है आत्माओं की पुकार। वो क्या है? दो पुकार बताइए बाबा ने। आत्माओं की पुकार क्या है? हम सब कौन है आत्माओं के लिए? किसी ना किसी रूप से इष्टदेव, इष्टदेव और इष्टदेविया है। वो क्या कह रहे हैं? हे इष्टदेव, क्या करो? परिवर्तन करो, अपने देवतापन का स्वरूप इमर्ज करो, विश्व की आत्माओं के प्रति स्नेह का भाव इमर्ज करो, स्व उन्नति के लिए स्नेह का भाव इमर्ज करो। एक जगह ये भी कहा है बाबा ने। तो आत्माओं को देना है। अगर हम नहीं देंगे तो गले में कौन सी माला होगी? उलानों की माला होगी। कौन से उलाना देंगे वो लोग? हमको बताया क्यों नहीं? एक दूसरा क्या कहेंगे? नहीं, वो हमको कहेंगे क्या? संसार की आत्माएं क्या कहेंगे हमको अगर हमने उन्हें नहीं बताया? एक दिन आके कुछ तो कहेगी। कंजूस हो, बहुत ही कंजूस हो, माल खुद ही रख लिया अपने पास, और क्या कहेगी? हमारा बाप आया और आपने हमको बताया क्यों नहीं, और क्या कहेगी? एक मुरली पूरी इस पे चली थी, कभी बाबा ने कहा था कोई भी एरिया ना छूटे, एरिया एरिया में जाके सेवा करो, एक भी आत्मा वंचित ना रहे, सबको ये संदेश दो। आज की मुरली में क्या कहा है? खुशखबरी, महान खुशखबरी सुनाओ। कौन सी? परम पिता परमात्मा, निराकार, पतित पावन, ज्ञान का सागर, गीता का भगवान, गीता का भगवान, कल्प पहले जैसा फिर से इन ब्रह्मा कुमार कुमारी द्वारा इस कलयुगी पतित विकारी भ्रष्टाचारी दुनिया को परिवर्तन कर फिर से श्रेष्ठाचारी पावन निर्विकारी दुनिया सतयुगी दुनिया बना रहे हैं। इतना बड़ा बोर्ड लिखो, बाबा ने कहा, ये खुशखबरी सुनाओ दुनिया वालों को, दुखों में कितने डूबे हुए हैं। अपने ही तन मन धन से किसी का डोनेशन की आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रारब्ध हम ही भोगने वाले हैं। तो बाबा ने कहा खुशखबरी, ढिंडोरा पीटो। बीत चली दुख भरी रात स्वर्णिम प्रभात में लाया हूं, ताज तख्त और तिलक साथ सौगात में लेकर आया हूं। क्या जगर मगर आ जाओ इधर परमात्म शरण की बाहों में। ये संदेश विश्व की हरेक आत्मा तक पहुंचाना है, नहीं तो उलाने देंगे। उलाने की माला पहननी पड़ेगी, फूलों की नहीं। कौन से इष्ट हो पूज्य हो न, बाबा ने बोला है, कौन से इष्ट हो पूज्य हो न। आत्माएं पुकार रही है, आत्माओं की पुकार सुनाई देती है कि हम अपने ही दुखों में डूबे हुए हैं। ब्राह्मण पुकारते हैं भक्त, हे माँ, हे जगत जननी, हे जगदम्बा, हे सरस्वती, हे काली। काली खुद ही पुकार रही है। वो सीन कैसा होगा कि मादाएं अष्टभुजाधारी शेर पर सवार और भक्त पीछे आ रहे, हे माँ, हे जगत जननी, रक्षा करो, कृपा करो, और मादाएं खुद भाग रही है, बाबा आप हमारी रक्षा करो। भक्त पीछे और अष्टभुजाधारी शेर पर सवार तेज भाग रही है, बाबा कहाँ हो, मेरी रक्षा करो। ये सीन कैसा दिखता है आंखों के सामने। बाबा से अब मांगना नहीं है, सब कुछ दे दिया है, कब तक मांगते रहोगे, सब कुछ दे दिया है। अब बाबा से ये कहो कि अब हमें क्या करना है आपके लिए, वो बताओ। आपसे अब बहुत ले लिया, अब नहीं मांगेंगे। मांगने के दिन अब पूरे हुए, अभी देने के दिन है, तो इतना स्वयं को भरपूर करना है। और कुमारों का सम्मान क्या है, इष्ट देव है हम भी। जय गुण ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। तो हनुमान गणेश ये हमारे यादगार है। तो आत्माओं को संकट मोचन हम है, संकट से मुक्त करना है संसार की आत्माओं को, ये सारे हमारे ही यादगार है। बाबा ने कुमारों के लिए कहा है, ब्रह्मा कुमार बनने के फायदे ही फायदे हैं। फर्स्ट टाइमर जो है ना, उनसे कहा ना कि क्या कहा, फायदे ही फायदे हैं। कोई नुकसान, एक हाथ नुकसान, कोई कोई नुकसान नहीं। तो बाबा ने कहा पुरुषार्थ कितना किया, आधा जन्म, चौथाई जन्म, और प्रारब्ध जन्म जन्म के लिए, जन्म जन्मांतर के लिए फायदा ही फायदा। और ब्रह्मा कुमार बने भी कितने दिन में, अगर एक दिन में भी बाप समझकर कनेक्शन जोड़ा तो वर्ष के अधिकारी है, अगर एक दिन में भी दिल से बाबा कहा तो वर्ष के अधिकारी है। तो ये नहीं समझो कि हम एक मास के हैं, छह मास के हैं, एक साल के हैं, एक साल के हैं या कितने भी साल के हो, परंतु सबको दाता बनना है, क्योंकि जन्मते ही सारी संपदा तुरंत हमें मिल गई है वर्षे के रूप में। तो बाबा ने कहा समय की पुकार दातापन का स्वरूप इमर्ज करो, आत्माओं की पुकार परिवर्तन करो, दातापन का स्वरूप इमर्ज करो फिर से। फिर यहां बाबा ने कहा कि सबको समान दिया है बाबा ने, कोर्स एक ही, ज्ञान एक ही, प्यार एक ही, वर्षा एक ही, शक्तियां एक ही। ऐसा नहीं किसी को आठ और किसी को सोलह, सबको एक ही मिला है तो मालामाल हो ना। तो सारे मालामाल अगर बाबा ने कर दिया है तो दूसरों को भी मालामाल करना है, दूसरों को भी हमें देना है। मनसा वाचा कर्मणा, संबंध संपर्क जो भी हम करें वो विश्व कल्याण के लिए हो, हमारा योग भी जो हो वो विश्व कल्याण कर रहे, जो हमारा मुरली का चिंतन भी हो वो भी विश्व कल्याण के लिए। आज मुरली में बाबा ने वरदान में कहा है आत्माओं का आह्वान करो, आत्माओं से रूह्यान करो, आत्माओं के स्वभाव संस्कार को परिवर्तन करो, आत्माओं का कनेक्शन बाप से जुड़वाओ। ये हमारे कर्तव्य है, मनसा में हमें ये कर्तव्य करना है, आत्माओं को आह्वान करना, हे देवी देवता धर्म की आत्माएं जिन्होंने अब तक ये ज्ञान सुना नहीं, लिया नहीं, बाप को जाना नहीं, पहचाना नहीं, उनको आह्वान करना, उनका आह्वान करना, उनका कनेक्शन बाप से जुड़वाना, उनसे रूहरियान करना, ये सारे हमारे श्रेष्ठतम कर्तव्य। बाबा ने कहा सूक्ष्म अनुभव की लीला करो, क्या करो, सूक्ष्म अनुभव की लीला, सूक्ष्म अनुभव। अध्यात्म मार्ग में तीन प्रकार के अनुभव होते हैं जो कहे जाते हैं। एक अनुभव होते हैं वो थोड़े स्थूल अनुभव होते हैं जो कि बाहर के अनुभव होते हैं, बहुत खुशी हो जाना, बहुत आनंद उत्पन्न हो जाना, ये बाहर के अनुभव है। कुछ आंतरिक अनुभव है जो बीच के अनुभव है, जिसमें देह में कुछ परिवर्तन होता है, जैसे किसी को आंसू आ जाना, जिसको क्या कहते हैं, पूरे रोमांच खड़े हो जाना, ये सारे अनुभव है। ये वो तो भय के लिए यूज करते हैं तो रोमांच, आंसू आ जाना, अशरीरीपन का अनुभव हो जाना, ये दूसरे, ये जो पहले अनुभव है फर्स्ट स्टेप, जो बहुत खुशी, उसके आगे के अनुभव है वो थोड़े आंतरिक अनुभव है, जिसमें शरीर में कुछ कुछ होता है, ऐसे लगता है शरीर है या नहीं है। और सबसे गहनतम जो अनुभव है वो अतींद्रिय अनुभव है, जिसमें ये इंद्रिय ही नहीं है, वो आत्मा के तल पर अनुभव हो रहे, बहुत ही गहराई में जो अनुभव होते हैं, ये अनुभव होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मील के जैसे पत्थर है, निशान लगाया है आगे और जाना है, वहां पर रुक नहीं जाना है। ये भी एक है, उसमें दो बातें हैं, एक तो ऐसा है कि अभी तक कुछ अनुभव नहीं हुआ, एक तो है कि ये इतना ही हुआ, परंतु ये इतना ही हुआ उसके लिए भी धन्यवाद कि ये तो हुआ, क्योंकि ये हुआ इसका मतलब ही अभी और आगे होने वाले हैं, और ये यात्रा जो है अध्यात्म की बहुत लंबी यात्रा है, इंद्रिय से अतींद्रिय तरफ चलना है, देह के सुखों की तरफ से आत्मा के सुखों की तरफ चलना, आत्मा के सुखों का अनुभव, अतींद्रिय सुखों का अनुभव, जिसमें देह जैसे है ही नहीं, देह की प्रतीति ही जैसे समाप्त हो रही है, केवल सूक्ष्म अनुभव हो रहे हैं, वो जो अनुभव है वो निरंतर रहते हैं, वो एक सेकंड में भी हो सकते हैं, और वो जो अनुभव इतने गहरे हैं, इतने गहरे हैं कि वो आत्मा को परिवर्तन कर देते। उस दिन दादी जानकी बता रहे थे ना, चंद्रमणि दादी के पिताजी की बातें बता रही थी, कितनी पुरानी बात होगी वो, कैसे परिवर्तन हो गए पूरे। तो आत्मा को परिवर्तन क्या करता है, वो अनुभव, वो फीलिंग खो जाती है, जैसे उस अनुभव में आत्मा, जैसे आज की मुरली में बाबा को भी बहुत नशा रहता है इन चित्रों को देखते हैं कि मैं भी जाकर ऐसा बनूंगा। ये केवल ज्ञान नहीं है यहां पर, यहां निश्चय है, अनुभव है, सूक्ष्मतम अनुभव है। तो दाता, आत्माओं के प्रति दाता, समय हमें पुकार रहा है, उसकी पुकार को सुनना, प्रकृति की भी पुकार को सुनना, परमात्मा की पुकार को सुनना, एडवांस पार्टी की आत्मा है वो भी हमें कुछ कह रही है सुनना, ये इन स्थूल कानों से नहीं सुनी जा सकती ये आवाज, क्लीन और क्लियर। इसमें बाबा ने और एक बात जोड़ी थी, बुद्धि और मन खाली चाहिए और क्लीन चाहिए तो ये कार्य हो सकता है। आज की मुरली में भी कहा है क्लीन और क्लियर तो ये कार्य हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। सभी के लिए शुभ भावना है, इतना हमारा चित्त क्लियर हो जाए। जो विदेशियों के लिए भी बाबा ने कहा ना, कैसे है वो, हाँ तो हाँ, नहीं तो ना, एक तो ये या नहीं, साफ है, स्वच्छ है, ऐसे जो स्वच्छ है वो भगवान को बहुत प्रिय है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसके हृदय में कपट है, छल है, दूसरों के दोष देखने की वृत्ति है, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जो साफ है, स्वच्छ है, ब्लेसड आर द प्योर इन हार्ट फॉर दे शैल सी द किंगडम ऑफ गॉड, उन्हीं को परमात्मा प्राप्त होगा। धन्य भागी है वही जिनका हृदय स्वच्छ है, निर्मल है, प्रांजल है, ट्रांसपेरेंट है। कुछ अंदर बाहर अलग अलग जो है उनको 69 की मुरली में क्या कहा था बाबा ने, खौफनाक। आज की मुरली में भी कहा है ऐसी कुछ बात, एक्यूरेट बनने की बात कही है ना, तो अंदर और बाहर एक, सोच कुछ और रहे, कह कुछ और रहे, कर कुछ और रहे, ऐसा हमारा व्यक्तित्व ना हो, खंडित, स्प्लिट पर्सनैलिटी ना हो, शिज़ोफ्रेनिक जो हम हैं वो है। बाबा इसीलिए विदेशियों को कितना पसंद करते हैं, हिम्मत है उनमें। बाबा ने कहा पहले बहुत प्रश्न थे, तब प्रश्न थे ब्राह्मण कल्चर और फॉरेन कल्चर, अभी किस कल्चर में आ गए, किस संस्कृति में आ गए, कौन सी तहजीब में आ गए, ब्राह्मण संस्कृति। दो शब्दों में परिभाषित किया है बाबा ने ब्राह्मण संस्कृति को। ये भारतीय संस्कृति भी नहीं है, भारतीय संस्कृति संसार में सर्व महान संस्कृति है, संसार की बाकी सभी सभ्यताएं समाप्त हो गई, मिस्र की सभ्यता, ग्रीक की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, सारी सभ्यताएं समाप्त रहेगी, भारत की एक ही सभ्यता बची है। परंतु बाबा कह रहे उसमें भी खिटपिट है, वो भी नहीं, क्योंकि अब समय अनुसार, समय के चक्र अनुसार वो भी जैसे जर्जर हो चुकी है, उसके भी पाव अभी कब्र में है। इसके लिए बाबा नई संस्कृति का सूत्रपात कर रहे हैं, वो संस्कृति है ब्राह्मण संस्कृति। ब्राह्मण संस्कृति है समान, ब्राह्मण संस्कृति है स्वराज्य अधिकार। कितनी सुंदर संस्कृति है, जिसका नींव ही ये है, स्वराज्य जिसका, स्वराज्य अधिकार जिसका नींव है, ये ब्राह्मण संस्कृति है। समान भक्ति में क्या कहा था, और यहां समान, आते ही समान दे दिए बाबा ने, इतने बड़े बड़े समान। कल सूरज भाई जी भी बता रहे थे ना, कौन है इष्टदेव, कौन है विश्व कल्याणकारी, कौन है हम पूर्वज, सारी समान एक जैसे है, जैसे जुड़े हुए, किसी एक समान में भी स्थित हो जाना अर्थात संपूर्णता है, समान अर्थात बाप समान बन जाना है, इतने ऊंचे हमारे समान है। तो पुकार की बाबा ने बात की कल की मुरली में, फर्स्ट टाइमर वालों से बाबा मिले, उसके बाद में विदेशी से मिले, और उसके बाद में और भी कोई पॉइंट कही कल की मुरली से, ड्रिल कराई बाबा ने, क्या कहा, पंख कैसे हो शक्तिशाली, पावरफुल। अभी कल परसों किसी ने मुझे एक संदेश भेजा था जिसमें दिखाया हुआ एक पक्षी एक पेड़ की डाली पर बैठा हुआ है। वो पक्षी जो है वो डाली पर इसलिए बैठा है, इसलिए नहीं कि उसके उसको उस डाली पर विश्वास है, उसे अपने पंखों पर विश्वास है। डाली तो कभी भी टूट सकती है, परंतु उसे विश्वास किस पर है, अपने पंखों पर विश्वास है। तो पंख को मजबूत करना है, डाली तो सारी टूट जाएगी। ये डाली किसका प्रतीक है, परिस्थिति, स्थान, व्यक्ति, किसी पर भी हम निर्भर ना हो, स्वतंत्र, इस मार्ग में अकेला चलना है, इस मार्ग में स्वयं को शक्तिशाली बनाना है, इस मार्ग में कोई भी हमारे साथ नहीं है, एकला चालू रे। रविंद्रनाथ टैगोर की कविता है ना, एकला चालू रे, तो वे एकला चालू रे। इफ दे आंसर नॉट टू दाई कॉल, वॉक अलोन, अगर तुम पुकारो और वो आवाज ना दे, अकेला चलो। इफ दे डेजर्ट यू एंड लीव यू इन द वाइल्डरनेस, ओ धाउ ऑफ इविल लक, ऑन दैट ब्लड लाइन ट्रैक ट्रैम्पल, ऑन दैट ब्लड लाइन ट्रैक वॉक अलोन, ट्रैम्पल द थॉर्न एंड वॉक अलोन। वो जो मार्ग है जिस पर पूरे कांटे बिछे हुए है, उस रक्त रंजित मार्ग पर तुम्हें चलना है, और वो भी अकेला ही चलना है। अध्यात्म का ये जो मार्ग है, यहां कोई हमारा साथी नहीं है, एक बाप ही, केवल एक ही वही सहारा है, और कोई सहारा नहीं है। अगर किसी को सहारा बनाया तो गिरेंगे, अग्निपथ, अग्निपथ है ये, उसके अतिरिक्त और कोई यहां आ जाए, प्रेम गली अति सरकरी, जा में दो ना समाए, ये गली में दो नहीं आ सकते। एक साधु होता है, उसकी कुटिया में एक दिन दो सैनिक आते हैं, वो कहते हैं हमें प्यास लगी है, पानी दो। वो कहता है पानी लो। वो कहता है आपकी कुटिया कैसी है, यहां कोई भगवान की मूर्ति नहीं है। वो कहता है मेरी कुटिया बहुत ही छोटी है, मैं मूर्ति रखने के लिए स्थान ही नहीं है। वो कहते हैं ठीक है, बेचारा गरीब है ना। तो दूसरे दिन फिर आते हैं दोनों सैनिक और मूर्ति लेके आते हैं भगवान की, इसको रखो। वो कहता है कि मेरी कुटिया में किसी मूर्ति की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि अब मेरी कुटिया में केवल मैं रहता ही नहीं, केवल वही रहता है। वो अपने हृदय की तरफ हाथ करता है, इस कुटिया की बात कर रहा है वो। इस कुटिया में अब मैं है ही नहीं, मैं मिट चुका हूं, अब केवल वही रहता है। इसके लिए वहां किसी भी मूर्ति की आवश्यकता नहीं। ये मार्ग ऐसा है, प्रेम पंथ हो ऐसो कठिन। प्रेम पंथ है परंतु कठिन भी है, परंतु यहां दो ना समाए। यहां दो अगर किसी को साथी बनाया, साधन, व्यक्ति, वस्तु, वैभव, आधार, कुछ भी संसार का, तो खतरा है इसमें। इस मार्ग पर अकेला ही चलना है, और जितना हम अकेले चलेंगे उतनी ही बाप की मदद मिलेगी। केवल वो और वो, केवल एक वही और कोई नहीं। इस संसार का व्यक्ति, वैभव, वस्तु सब कुछ तुच्छ है उसके प्रेम के आगे। उसका प्यार, उसकी मदद, उसका प्यार, उसका प्रेम भी उसी हृदय में प्रकट होता है जहां कुछ नहीं है, खाली हो गया है वो। कोई एक बहन हमेशा कहते हैं हंसी में कि हृदय में हमेशा एक सोफा रखो, अपने हृदय में एक चेयर रखो, सोफा नहीं रखो। सोफा रखो तो तीन चार लोग बैठ जाएंगे, केवल एक चेयर जिसमें केवल बाबा बैठे और कोई ना। तो दाता, फिर से स्वयं को रिवाइज कराना है कि मुझे दाता बनना है। आज की मुरली में बाबा ने क्या कहा? अंतर्मुखता, एकाग्रता का आधार क्या है? अंतर्मुखी हो जाना। अंतर्मुखता, मौन और एकांत, ये अध्यात्म के तीन सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। बाह्य मुक्ता में, ये मार्ग बाह्य मुक्ता का नहीं है, इनर माइक्रोकॉजम, मैक्रोकॉजम नहीं, बाहर का जगत नहीं, आंतरिक जगत, अंदर जाने का मार्ग है ये। ये यात्रा आंतरिक है, ये दिखावा नहीं है इस मार्ग में। जहां दिखावा होगा, जहां आडंबर होगा, स्पिरिचुअलिटी इज कंप्लीट इंट्रोस्पेक्शन। अपने आप को देखना है, किसी को और देखने का मार्ग ही नहीं है। तो अंतर्मुखता, एकांत और मौन, ये तीन अमृत तुल्य शब्द है। तो बाबा ने क्या कहा? एकाग्रता को बढ़ाओ, उससे क्या हो जाएगा? विघ्न समाप्त हो जाएंगे। विघ्नों के लिए और भी कोई बात कही है आज की मुरली में बाबा ने? आशीष भाई, क्या कहा विघ्नों के लिए? कि यहां पर ऐसा कोई कार्य ना करो कि जिससे विघ्न पड़े। अब प्रश्न है, कौन से ऐसे कार्य है जिसमें सर्विस में विघ्न पड़ते हैं? कोई दो तीन कार्य बताओ। ऐसे कौन से कार्य है जिससे सर्विस में विघ्न पड़ते हैं? संशय बुद्धि, आज की मुरली में ट्रेटर बन जाते, संशय बुद्धि बन जाते, और व्यर्थ संकल्प, ये सबसे सूक्ष्म विघ्न है। योग में हम यहां बैठे हैं, संगठित योग अगर चालू है और हमारे व्यर्थ संकल्प चल रहे, निगेटिव संकल्प चल रहे, घृणा, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष या विकार के संकल्प चल रहे, वो सबसे बड़ी डिसर्विस है हमारे द्वारा। बाबा ने कहा है, बाबा दिखाएगा अंत में एक एक ने क्या क्या कर्म किए, ऐसे ही सजा नहीं देगा, बड़ी स्क्रीन पर दिखाएगा। अगर कहो कि ये मैंने नहीं किया तो ऑडियो वीडियो सब कुछ है, एक भी कर्म छूटा नहीं रह सकता है किसी का भी। बाबा ने कहा है आज की मुरली के सब कुछ बाबा दिखाएगा, एक एक कर्म को दिखाएगा। तो हमारे मन के संकल्प, हमेशा बाबा ने कहा है ना, हमेशा ये सोचो कि हमें बाप देख रहा है, आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, सब ओर से वो देख रहा है, सब ओर उसकी नजर है, सब वो सुन रहा है। जब भक्ति में कहते हैं कि चींटी की पाव में घुंगरू हो तो वो सुनता है, तो ही दैट प्लांटेड द ईयर शैल ही नॉट हियर, ही दैट प्लांटेड द आई शैल ही नॉट सी। जिसने आग दिया क्या वही नहीं देखेगा? वो सब कुछ देख रहा है। बाप की दरबार धर्मराज, आज बाबा ने कहा है, बड़ी दरबार है ये। तो हमारे एक एक संकल्प शुद्ध संकल्प हो, श्रेष्ठ संकल्प हो, महान संकल्प हो, हमारा एक एक बोल किसी को घायल करने वाला ना हो, दुख देने वाला ना हो, व्यंग ना हो उसमें, व्यंग बाण ना हो, कि जो जहां गए दो तीन आत्माएं घायल, ऐसे ना हो, श्रेष्ठ हो, महान हो। तो और क्या कहा बाबा ने? हाँ, अच्छा, हम थे कौन से ऐसे कार्य है कि जिससे विघ्न पड़ते हैं? व्यर्थ संकल्प, निगेटिव संकल्प, ये तो बहुत सूक्ष्म बात है, थोड़ा स्थूल, झूठ बोलना, और अंदर बाहर अलग, देह भान और मन मत मिक्स करना श्रीमत में। तो मुरली तो बहुत है, ज्ञान का विस्तार बहुत है आज का। ये क्लास हम यहीं पूरा करते हैं। तो सभी सभी अपने दातापन के स्वरूप में स्थित हो जाए, पंखों को मजबूत करें, बाबा शब्द कहा और उड़ा। ओम शांति।
प्रभु का ध्यान।